हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आर्ना कहते कहते बीच में रुक जाती है और शॉक्ड से उसका मुंह खुला रह जाता है। आर्ना को चुप देखकर उसकी आंखों को फॉलो करते हुए नैना भी मुड़कर दरवाजे की तरफ देखती है। रिदांश फुल टशन और एटीट्यूड के साथ अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ दिए हुए नैना और आर्ना की दिशा में देखते हुए खड़ा था। उस वक्त उसका एटीट्यूड और चेहरे के तीखे भाव देखकर कुछ पल के लिए नैना की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। नैना रिदांश को देखकर अपनी जुबान को अपने दांतों के नीचे दबाते हुए जल्दी से अपना मुंह आर्ना की तरफ घुमा लेती है। कुछ पल बाद रिदांश भी कमरे के अंदर आता है और बिना कुछ बोले अपने कबर्ड में से अपनी फाइल लेकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद नैना एक गहरी चैन की सांस लेती है और फिर एक टक आर्ना को देखती है, जो एक पल उसे यूं ही देखने के बाद अगले ही पल जोर से हंस पड़ती है। उसे यूं हंसता देख एक पल के लिए नैना झेंप जाती है। नैना झेंप कर, वॉट, ऐसे क्यों हंस रही है तू? आर्ना नैना की नकल उतारते हुए, अरे मैं उससे कोई डरती नहीं हूँ, कीमा बना दूंगी उसका। अगर वो भस्मासुर है तो मैं भी ताड़का हूँ। हंसते हुए, ताड़का तो छोड़, उसके आते ही तो भीगी बिल्ली बन गई। नैना मुंह बनाते हुए, हाँ तो अब उसका ऑरा ही इतना डेंजर सा है, उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे जिंदा ही निकल जाएगा। आर्ना हंसते हुए, OMG, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि नैना दी ग्रेट भी किसी से इस कदर डर सकती है। हाँ तो वो भस्मासुर है ही इतना खड़ूस। आर्ना, अब यार ऐसा भी कुछ नहीं, वो इतना बुरा भी नहीं है। नैना अपनी भौहें ऊंचा कर, ओ रियली, तो फिर वो कैसा है आर्ना जी, आप ही मुझे बता दीजिए। आर्ना झेंप कर, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि दो दिन से उसने मेरी बहुत हेल्प करवाई, मेरा ट्रीटमेंट करवाया और भी बहुत कुछ। वैसे एक बात तो है, उसके कांड भले ही भस्मासुर और राक्षस वाले हों, लेकिन बंदा तो हॉट एंड सेक्सी है, गुड लुकिंग, हैंडसम, मतलब पूरी पर्सनैलिटी किसी परफेक्ट मॉडल की तरह है जो देखे बस देखता ही रह जाए। अब तो चुप भी कर, यहाँ तो सिर्फ उसके बारे में ही बात करने के लिए आई है। क्यों, मेरे मुंह से उसकी तारीफ सुनकर तुझे जलन हो रही है? आर्ना आंखें दिखाते हुए, अगर तूने अपनी बकवास बंद नहीं की ना तो मैं तुझसे अब बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। अरे अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी मेरी जान, अच्छा सॉरी ना बाबा। अब आर्ना मुस्कुराकर, इट्स ओके, अच्छा और बता सब कैसा चल रहा है? सब एकदम बढ़िया। कुछ और देर बातें करने के बाद नैना आर्ना के गले मिलकर और उसे अपना ख्याल रखने का कहकर उससे विदा लेती है। नैना जब आर्ना के कमरे से लिविंग एरिया में जाती है तो वहाँ रिदांश किसी से फोन पर बात कर रहा होता है और कुछ पल बाद ही वो फोन रख देता है। तभी अंदर से आती प्रिशा नैना को देखती है। प्रिशा, नैना दी आप जा रही हो, खाना खाकर जाइएगा। नो थैंक यू प्रिशा, ऑलरेडी काफी लेट हो गया है, फिर कभी। ओके, लेकिन अगली बार पक्का? नैना मुस्कुराकर, जरूर। तभी प्रिशा की कॉल आ जाती है और वो एक्सक्यूज करके वहाँ से चली जाती है। रिदांश अपने ड्राइवर को आवाज देता है जो अगले ही पल वहाँ हाजिर हो जाता है। रिदांश नैना की तरफ इशारा करके, ड्रॉप हर एट हर होम। ड्राइवर, यस मास्टर। इसके बाद रिदांश वहाँ से जाने लगता है लेकिन नैना जल्दी से उसे टोकती है। नैना, थैंक्स बट नो थैंक्स, आई कैन मैनेज। रिदांश एटीट्यूड भरे एक्सप्रेशन से, इस वक्त मुंबई की सड़कों पर जो रिश्तेदार चोर उचक्के तुम्हें मिलेंगे, अगर तुम उनसे टकरा गई तो वो अच्छे से तुम्हारी खातिरदारी करेंगे। फिर भी आई कैन मैनेज। रिदांश अपने कंधे उचकाते हुए लापरवाही से, ओके एज योर विश। इतना कहकर रिदांश वहाँ से सीढ़ियों की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। नैना मन में, कितना खड़ूस है ये भस्मासुर, एक बार और नहीं पूछ सकता था। डरते हुए, अगर सच में मुझे किसी गुंडे या उचक्के ने पकड़ लिया तो मैं क्या करूँगी? तुझे भी क्या ही जरूरत थी मना करने की नैना की बच्ची, अगर वो खड़ूस कह ही रहा था तो चुपचाप मान जाती ना, क्या जरूरत थी अपनी अकड़ दिखाने की। नैना अभी अपने ख्यालों में ही गुम थी कि रिदांश सीढ़ियां चढ़ते हुए वापस पीछे नैना की तरफ देखता है और उसकी आवाज से नैना का ध्यान टूटता है। रिदांश, हाँ एक बात और, वो राक्षस किसी से भी नहीं डरते। तंज भरे लहजे में, फिर चाहे उनके सामने कोई कितना भी बड़ा राक्षस या ताड़का क्यों ना आ जाए। रिदांश की बात सुनकर नैना झेंप जाती है और रिदांश अपनी एटीट्यूड भरी हल्की स्माइल के साथ ऊपर चला जाता है। ड्राइवर, मैम चलना है? नहीं, यहीं बिस्तर जमा दो मेरा। जी, नैना फ्रस्ट्रेट होकर, चलो भी अब या यहीं खड़े रहोगे? इसके बाद नैना वहाँ के ड्राइवर के साथ अपने घर के लिए निकल जाती है। इधर जब रिदांश कमरे पहुँचता है तो आरना बिस्तर पर बैठी कुछ सोच में डूबी थी और रिदांश को वहाँ देख कर उसका ध्यान टूटता है। रिदांश अपने कबर्ड से कपड़े निकालकर चेंज करने चला जाता है और कुछ देर बाद आरना के साइड में दूसरी तरफ आकर आंखें बंद करके लेट जाता है। आरना, मेरा पैर अब पहले से बेहतर है, अब मैं अपनी जगह ही सोना चाहती हूँ। रिदांश, अपनी आंखें बंद किए हुए ही चुप करके सो जाओ। आरना, लेकिन मैं यहाँ कंफर्टेबल होकर नहीं सो पाती। रिदांश, लापरवाही से, फिर भी तुम्हें यहीं सोना है। आरना, थोड़ा चिढ़कर, यहीं सोना है का क्या मतलब? मैं नहीं सो सकती यहाँ। रिदांश अपनी आंखें खोलते हुए एक पल आरना को देखने के बाद, ओ नाउ आई अंडरस्टैंड कि तुम क्यों यहाँ नहीं सोना चाहती। ओ रियली, और क्या समझे आप? वही जो सच है। और सच क्या है? रिदांश फुल एटीट्यूड के साथ, यही कि एक ही बेड पर मेरे और मेरी चामनेस के साथ तुम्हारा खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल होता है। आरना, ओ प्लीज, आपकी चामनेस से कहीं मैं मर ही ना जाऊं। और वैसे भी इस दुनिया में ना सब चीज का इलाज है सिवाय गलत फहमी के। और बेशक आप हैंडसम और हॉट होंगे तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि मैं बाकी लड़कियों की तरह आप पर मर मिटने के लिए तैयार बैठी हूँ। मैं भी आरना कपूर हूँ, कोई ऐरी गैरी फालतू लड़की नहीं जो बस आपके चाम पर मरी जाऊँ। रिदांश आरना की तरफ देखकर, ओ रियली? आरना फुल कॉन्फिडेंस के साथ, यस ऑफ कोर्स। रिदांश आरना की बात सुनकर अपनी जगह से उठकर आरना की तरफ बढ़कर उस पर झुकने लगता है। आरना अपने पैर की चोट की वजह से वहां से ना उठ पाने की वजह से अपने पीछे बिस्तर पर झुकने लगती है और तब तक झुकती रहती है जब तक उसका सर तकिए पर आकर नहीं टिक जाता और रिदांश ठीक उसके चेहरे के आगे आकर नहीं रुक गया था। आरना बस तेज धड़कते दिल के साथ एकटक उसकी खूबसूरत आंखों में देखे जा रही थी। रिदांश आरना की आंखों में देखते हुए ब्लैंक एक्सप्रेशन से, रिमेम्बर, तुमने मुझसे कहा था कि मैं जुबान से भले ही झूठ कहूँ लेकिन मेरी आंखें तुम पढ़ सकती हो जिसमें तुम्हें सच नजर आता है। तो डार्लिंग, आज सेम लाइन मैं तुम्हें डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि तुम चाहो जो कहो लेकिन मेरी करीबी से तुम्हारी ये आंखें और जरूरत से ज्यादा धड़कता दिल हमेशा ही सच बयां करते हैं, जिसमें हर वक्त मेरी करीबी से एक हलचल मच जाती है और जिस पर तुम चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर पाती। और अगर तुम्हें फिर भी यकीन नहीं तो यू कैन चेक इट। रिदांश की बात सुनकर आरना को अपना उस दिन वाला सपना याद आ जाता है जिसमें रिदांश ने उसे ऐसा ही कुछ कहा था और फिर उसके होंठों पर किस कर दिया था। इतना याद आते ही आरना के चेहरे पर अजीब से भाव आ जाते हैं और वो जल्दी से अपने दोनों हाथों को अपने मुँह पर कस कर रख लेती है।
ओ प्लीज, मेरा टेस्ट इतना गंदा कभी भी नहीं हो सकता। कोल्ड एक्सप्रेशन से, तो इस तरफ कभी सोचना भी मत, क्योंकि अगर तुम इस दुनिया की आखिरी लड़की भी होगी ना तो भी तुम्हें छूना तो बहुत दूर की बात है। मैं कभी तुम्हें देखना तक भी पसंद नहीं करूंगा। नाउ शट योर माउथ एंड लेट मी स्लीप। इतना कहकर रिदांश वापस से अपनी जगह आकर लेट जाता है। रिदांश की बात सुनकर अनजाने ही आरना की आंखों में एक अनजानी सी उदासी छा जाती है और वो बिना कुछ बोले दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाती है और काफी देर सोचने के बाद आखिर में उसे नींद आ जाती है। यूं ही एक हफ्ता बीत गया और उस दिन के बाद से आरना और रिदांश में कोई बात नहीं हुई थी। अब आरना का पैर पहले से बेहतर हो चुका था और वो सहारे के साथ कमरे में धीरे धीरे चलने लगी थी। दोपहर का वक्त था, आरना वॉशरूम से बाहर आती है कि समांथा एक बैग लिए वहाँ खड़ी थी और आरना को देखकर वो बैग लेकर उसके पास जाती है। आरना, क्या है इस बैग में? समांथा, ये आपके कपड़े हैं, मास्टर ने भेजे हैं और कहा है कि 7 बजे तक इसे पहनकर रेडी रहें। वो ठीक 7 बजे आपको पिक करने आएंगे। आरना, असमंजस से, लेकिन कहाँ जाना है? ये तो मुझे नहीं पता मैम। आरना, ठीक है, आप जाएं। इसके बाद समांथा वहाँ से चली जाती है और तभी आरना का फोन रिंग करता है जिस पर रिदांश की कॉल आ रही थी। कुछ पल बाद आरना फोन पिक करती है। हेलो, गेट रेडी एट शार्प 7 o'clock, हमें एक ऑफिशियल पार्टी में जाना है, सो बी रेडी ऑन टाइम। लेकिन मुझे नहीं जाना और मेरा पैर भी ठीक नहीं है। सर्द लहजे से, अगर मैं कह रहा हूँ जाना है तो मतलब जाना सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और रही बात तुम्हारे पैर की तो उसकी फिक्र छोड़ो, वो मैनेज हो जाएगा। नाउ गेट रेडी। इतना कहकर रिदांश बिना आरना के बात सुने फ़ोन काट देता है और आरना को ना चाहते हुए भी पार्टी में जाने के लिए राजी होना पड़ता है। आरना आहिस्ता से सहारे से चलकर अपने पैर पर बिना जोर दिए बेड पर बैठ जाती है और बेमन से उस बैग को खोलती है। लेकिन जब वो उस बैग को खोलकर उसमें रखी मोस्ट यूनिक एंड एक्सपेंसिव साड़ी की खूबसूरती को देखती है तो उसके चेहरे की सारी उदासी एक पल में छट जाती है और इस साड़ी की खूबसूरती को देखकर आरना के चेहरे पर एक छोटे बच्चे की तरह खुशी झलक उठती है। कुछ पल बाद ही बेला भी आरना को रेडी करने के लिए वहाँ आ जाती है। 7 बजने में अभी 15 मिनट बाकी थे और आरना को तैयार करके बेला भी वहाँ से जा चुकी थी। आरना पूरा तैयार होकर खुद को देखने के लिए लगभग रेंगते हुए एक बार आईने के सामने जाती है और जैसे ही उसकी आईने में खुद पर नज़र पड़ती है तो उसके चेहरे पर एक साथ खुशी और हैरानी भरे भाव एक साथ नज़र आने लगते हैं।